શ્રી મદ્રાસ ચંદ્ર પત્રાંક 213 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 40.
જાણતે હૈ કે તીર્થંકર કી વાણી કે અનુસાર યે વાત પ્રતિપાદન હુઈ હૈ, જાણતે હૈ. તદ અનુસાર ઇસ કાલ મે મોક્ષ નહીં હોતા હો તો इस क्षेत्र के यह प्रतिपादन तू रख, हम तो दूसरे क्षेत्र में जाकर के मोक्ष ले लेंगे. हमारी भावना इतनी है कि हम महाविद्या में चले जाएंगे इस वक्त और मोक्ष ले लेंगे. क्यों नहीं पाएंगे, हम पा लेंगे. हम तो क्या क्या उछाला आया है. इसकी मर्यादा इस क्षेत्र तक है. भगवान की वाणी की ऐसी मर्यादा नहीं है कि इस काल में कहीं मोक्ष होता ही नहीं है. महाविद्या में तो अभी भी होता है. हमारी भावना हमको वहां ले जाएगी. तो बात तो 5-25 साल का बीच में जो इस भव का है, तो ये 5-25 साल का भव है. ये भव हमारा कहाँ है? ये भव हमारा है ही नहीं. हम भव, इस भव हमने किया ही नहीं है. हम भव रूप हमको मानते ही नहीं है. हमारे कोई भव से लेना देना है ही नहीं. तो हम इसको क्यों गिने? थोड़े टाइम में उसके ऊपर में चले जाएंगे, वहां से चले जाएंगे. मोक्ष नहीं होता है वो बात ही नहीं बैठती हमको. तो ऐसा प्रतिपादन इस क्षेत्र के लिए रख और हमें मोक्ष देने की अपेक्षा ऐसा योग प्रदान कर कि हम सत्पुरुष के ही चरणों का ध्यान करें और उसके समीप ही रहें, फिर हमें मोक्ष की भी जरूरत नहीं है. देखो क्या आता है, कितना सत्पुरुष के प्रति उन्होंने अपनी भक्ति आई है. वो बिल्कुल नेचुरल कोर्स में आई है कि जब ऐसा सत्पुरुष का चरण सानिध्य मिलता है तो इस जीव को सब कुछ मिल गया, जैसे सर्वस्व मिल गया है. तो सर्वस्व मिल गया, इसका मतलब क्या है कि अब लेने को मोक्ष भी बाकी नहीं रहा. इसी का नाम सर्वस्व है. अगर सम्यक दर्शन लेना बाकी है, मोक्ष लेना बाकी है, वहां तक सर्वस्व नहीं मिला है. और सर्वस्व नहीं मिला है तो सत्पुरुष भी नहीं मिला है. सत्पुरुष मिलते हैं तो सर्वस्व के रूप में ही मिलते हैं, दूसरे रूप में नहीं मिलते हैं. ये एक ऐसी कोई विलक्षण परिस्थिति है. क्या एक प्रकार की एक विलक्षण परिस्थिति होती है, आती है, ऐसी ये बात है. इसलिए तो दूसरे चित्र में कहा ना कि मोक्ष से भी हमें सत्पुरुष के चरण समीपता अधिक प्रिय है. मोक्ष से भी प्रिय है. तो क्या देह छूट गया क्या? वो बात नहीं है वहां. वो बात है ही नहीं वहां. कहीं कोई दूसरी अपेक्षा कहीं लगानी नहीं है. ऐसा एक सर्वस्व मिला है, ऐसा एक उनको एक तृप्ति हो जाती है. तो कहीं और जगह इधर उधर का विकल्प उसको दौड़ता नहीं है. क्या कहते हैं कि हमें मोक्ष देने की अपेक्षा, मैंने मत तो अगर इस काल में मोक्ष नहीं है तो हे परमात्मा हमको मोक्ष मत दो. हमें कोई परवाह नहीं है, सत्पुरुष का चरण सानिध्य दे दो ना, बस हमारी अपेक्षा पूरी होगी. हमें मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष की भी हमें जरूरत नहीं है. तो फिर संसार की जरूरत है, ये बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि संसार की इस चीज की अपेक्षा है, इस संयोग की अपेक्षा है, इस परिवार की अपेक्षा है, इस चीज इस देह की अपेक्षा है. कोई देश देह से लेकर के किसी की अपेक्षा उसको नहीं रहती. हमें मोक्ष देने के बदले ऐसा योग प्रदान कर कि हम सत्पुरुष के ही चरणों का ध्यान करें और उसके ही समीप में रह जाएं, फिर उसको मोक्ष की भी जरूरत नहीं है. हे पुरुष पुराण, हम तेरे में और सत्पुरुष में कोई भेद ही नहीं समझते हैं. अब बात रही वो ज्ञान के जो मुख्यता वाली बात है कि आत्मा की बात क्यों नहीं आती और सत्पुरुष की आती है। जो पुरुष पुराण है आत्मने आत्मा है, वो तो आत्मा पाने की बात करने के बजाय सत्पुरुष की बात क्यों करते हैं? तो क्या हमको तो अंतर ही नहीं दिखता है, हमारे आत्मा में और सत्पुरुष में कोई अंतर नहीं दिखता है हमको, अंतर रहा नहीं है इसलिए दिखता नहीं है, दिखता नहीं इसका मतलब क्या है कि रहा भी नहीं है। ऐसा एक भाव प्राप्त होता है जिसको 223 में वो पराभक्ति कहेंगे, गोपांगनाओं की पराभक्ति जो की है इसमें एक भाव लिया है कि दो 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 आत्मा नहीं है, मेरी आत्मा अलग है सत्पुरुष की आत्मा अलग है, ऐसा हमको नहीं लगता है, आत्मा एक हो गई है ऐसा लगता है। उतना भाव से एकता आती है, द्रव्य भले ही अलग रह जाता है लेकिन भाव से ऐसे एकता आती है। तो कहते हैं कि ये पुराण पुरुष मैंने हमारी आत्मा तेरे में, उसको संबोधन करता है, अभी अपनी आत्मा को खुद संबोधन करता है कि मैं तेरे में और सत्पुरुष में कोई भेद नहीं समझता, तेरी अपेक्षा से तो हमें तो सत्पुरुष ही विशेष लगता है। देखो अब ओवर माउंट चलता है, मर्यादा छोड़ करके बात करेंगे, वास्तव में तो अपनी आत्मा मुख्य होकर के आराधना होती है, लेकिन इधर वो बात नहीं है। इधर तो कहते हैं कि हमारी आत्मा से भी हमको तो सत्पुरुष अधिक लगता है, विशेष लगता है। क्यों? कारण है, इसका लॉजिक है कि तू भी उसके उस उसके अधीन ही हो रहा है, तुम अपनी ओर नहीं जा करके उसके अधीन जाता है, इसका मतलब कि वो बड़ा है। तो उसकी विशेषता होनी ही चाहिए। और हम सत्पुरुष को पहचाने बिना तुझे पहचान नहीं सके, इसकी विशेषता क्यों नहीं रखे? क्या इसका उपकार हम भूल जाएंगे? क्या हुआ कि किसी ने उपकार कर दिया और उपकार होने के बाद समर्थ हो जाते हैं, बाहर में संपन्न हो जाते हैं, फिर उपकारी का उपकार भूल जाते हैं, कौन जानते हैं कौन पहचानते हैं, चलो जाने दो उसको, हमको बहुत काम है, ऐसा इस लाइन में नहीं होता है। कहते हैं कि अरे आत्मा, तुझे पहचानने के लिए तो हमको सत्पुरुष का ही उपकार हुआ है, हम उसको कैसे छोड़ देंगे इस तरह से, इसका उपकार हम विस्मरण कर सकते नहीं है। कारण कि हम सत्पुरुष को पहचाने बिना तुझे पहचान नहीं सके, यही तेरी दुर्घटता है। तेरी तो ये कठिनता है, यही तेरी दुर्घटता हम में, हमारे में सत्पुरुष के प्रति अधिक प्रेम को उत्पन्न कर देती है कि तू तो पहचानने में बहुत दुर्घट है, सत्पुरुष पहचानने में उतने दुर्घट नहीं है, इसलिए इनके प्रति हमें ज्यादा प्रेम आता है, तेरे प्रति कम आता है, इस यही कारण भी एक है ऐसा। क्या क्या लॉजिक लगाया है मैंने, भक्त को तो सब कुछ बोलने का छूट होता है, जैसे भगवान की भक्ति में आता है ना तो बहुवचन छोड़ देते हैं, भगवान तो महान है फिर भी उसको एक वचन से पुकारते कि नहीं पुकारते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि क्या उसका अपमान किया, क्या उसका बहुमान किया या इसका अपमान किया, ये सब अटपटी बातें होती है कि नहीं होती है? हाँ ऐसे ये सब अटपटी बातें हैं, उसमें कैसा बहुमान करते हैं, वो बहुमान करने का ढंग क्या है, ये बात है। ये तेरी दुर्घटता हमें सत्पुरुष के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है, क्योंकि तू वश में होने पर भी वे उन्मत्त नहीं है, उन्मत्त तो नहीं है तेरे से भी सरल है। क्योंकि तू जल्दी से पहचाना नहीं जाता, वो जल्दी से पहचाना, तू सरल है तो जल्दी से पहचानने में आता है, या तू जल्दी से जवाब नहीं देता, वो तो जवाब देता है, पूछने पर जवाब देता है, तो तेरे से भी सरल है। एक गुण और लगाया कि तेरे से भी वो सरल है, इसलिए अब तू जैसा कहे वैसा कर ले। अब तुम तू ही न्याय कर, हम तेरे पर छोड़ देते हैं, तुमको अन्याय नहीं होना मेरे से, हमारे से अन्याय नहीं होना, तुम ही इसका न्याय कर दो। कि जब तेरे से सरल है तुम उसको अधिक प्रेम करे तो उसमें क्या 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 कोई हमारा अन्याय है क्या, तुम न्याय कर लो कि सरल है कि नहीं है। तुम आत्मा पर छोड़ दिया कि तुम न्याय कर लेना। अभी ये नाम तो बुरा न मानना, हमने ऐसा कोई कह दिया है तो तुम बुरा मत मानना। कि हम तेरी अपेक्षा भी सत्पुरुष की विशेष स्तुति करते हैं, ये भगवान हम तेरे से भी ज्यादा अगर कोई स्तुति कर लेते हैं सत्पुरुष की, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार, इसे ज्यादा स्तुति कर लिया तो तुम बुरा मत मानना। सारा जगत तेरी स्तुति करता है, दुनिया तो तेरे पीछे लगी हुई है, सत्पुरुष को कौन पहचानता है, इसके पीछे कौन लगता है, सारा जगत तो तेरी स्तुति करता है। तो फिर हम एक तुझसे विमुख बैठे रहेंगे तो उससे कहां तुझे न्यूनता भी है, तुझे क्या खोटाती है। सारी दुनिया तेरा भजन करती है, तेरे पीछे लगी है, समर्पण में बहुत गिरदी होती है, समाते नहीं है लोग, अगर अगर हम तेरी स्तुति नहीं करेंगे, शत्रु की स्तुति करेंगे, तुझे क्या फर्क पड़ता है, किस परसेंटेज में तुझे फर्क पड़ेगा। दुनिया तो भगवान भगवान करके स्तुति करती है तेरी, अगर हमने हट करके सत्पुरुष की स्तुति कर ली तो तुमको क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इसमें। और वैसे ही तू वितराग है, फर्क तो रागी को पड़ता है, वितराग को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर हम एक तुमसे विमुख बैठे रहेंगे, तुम्हारे सम्मुख नहीं बैठेंगे, सत्पुरुष के सम्मुख बैठ जाएंगे, तेरे से विमुख बैठे रहेंगे तो उससे कहा कि न्यूनता भी है, उनको मैंने सत्पुरुष को कहां स्तुति की अपेक्षा है, हमारी स्तुति की भी इसको अपेक्षा नहीं, इसको तो किसी स्तुति की अपेक्षा होती भी नहीं है। देखो कैसे कैसे ये फिगर ऑफ स्पीच है, भाषा अलंकार जिसको कहते हैं, इसको अच्छी तरह बताने के लिए जैसे किसी को अलंकार पहनाया जाता है तो उसका दिखावा अच्छा लगता है, कपड़े अच्छे पहना है तो अच्छा दिखावा लगता है, वैसे सत्पुरुष की महत्ता को बताने के लिए सब अलंकार अलंकृत करके बताए हैं, महत्ता को भी अलंकृत की है, उसको भाषा अलंकार कहते हैं। भाषा ही का अलंकार नहीं है, शैली का भी अलंकार है, जो तो कथन पद्धति है वो भी मार्वेलस है, ऐसे सामान्य लेखक को नहीं आती है, वो तो कभी भी थे, कवि को कभी कभी आ जाती है लेकिन वो कभी भी थे और ऐसे लिखने में भी बहुत समर्थ थे। जैसे ज्ञानी भी अपनी ज्ञान दशा को भाषा में बहुत कम मात्रा में उतार सकते हैं, लेकिन कृपालु देव ने अपनी ज्ञान दशा को अंतर्बाह्य जिसमें झलकती हो ज्ञान दशा, बाह्य में भी जो आते हैं वो उतनी आई है कि उसी को ही अगर सही तरह से नजर में ले लें तो ज्ञानी को पहचानने का एक बहुत अच्छी चीज है। इस दृष्टिकोण से वो धन्य आराधना जो है इसका प्रकाशन किया, हम लोगों को तो मिलती है धन्य आराधना, कृपालु देव के अंतरंग दशा का जो बीच विवेचन किया है वो उसी दृष्टिकोण से किया है, तो खुद उनके शब्द में उनके वचनों में ही अपनी दशा जो आई है उनको खोल करके एलोबरेट करके रखी है उसमें, तो पहचानने के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण विषय मिलता है इस ग्रंथ में, विशेषता वो भी है। क्या कहते हैं, ज्ञानी पुरुष त्रिकाल की बात जानते हुए भी प्रकट नहीं करता करते, ऐसा आपने पूछा। हाँ, वहां पर आप शब्द छे ने गुजराती में, तो सुभाग भाई ऊपर अच्छे, फिर सुभाग भाई सिवाय आप शब्द मत आवा पड़ता। हाँ, इमें मार्क करेलू छे। हिंदी में तो तुम के जगह आप लिख सकते हैं, लेकिन गुजराती में तो शब्द फर्क पड़ता पड़े छे। सुभाग भाई ने એટલું બધું બહુ માન હતું કે આપ તો ત્રિકાળ જ્ઞાની છો, તો પછી કઈક બોલો ને એમ કે આગળ પાછળની વાત તો બતાવી દો અમારી। તો લખતે કે જ્ઞાની પુરુષ ત્રિકાળ કી વાત જાણતે હુએ ભી પ્રગટ નહીં કરતા કરતે હૈં, એસા આપને પૂછા કે ક્યો નહીં પ્રગટ કરતે હૈં, ઇસ સંબંધ મેં એસા લગતા હૈ कि ईश्वरीय इच्छा ही ऐसी है, हमको हमारा आत्मा में से ऐसी बात आती है कि कुछ बात प्रकट करना, कुछ जानते हुए भी प्रकट नहीं करना, ईश्वर इच्छा ऐसी है। ईश्वर इच्छा मैंने हमारे अंतरात्मा की आवाज ऐसी है कि सब बात को बताना नहीं चाहिए, मौके पर बता देना चाहिए, लेकिन हर वक्त हर बात सब बात को बताने की आवश्यकता नहीं होती, उससे नुकसान होता है। इस संबंध में ऐसा लगता है कि ईश्वरीय इच्छा ही ऐसी है कि अमुक पारमार्थिक बात के सिवाय ज्ञानी दूसरी दूसरी त्रिकालिक बात प्रसिद्ध न करे, क्योंकि उसमें चमत्कार का व्यामोह हो जाता है। जानते हुए भी ज्ञान में आ जाती हो कोई बात तो वो प्रसिद्ध नहीं करते हैं, और ऐसे चमत्कार के हिसाब से या ऐसी कोई बातें बताने से किसी को आकर्षित करना वो भी ज्ञानी के प्रवृत्ति में नहीं होता है। और ज्ञानी की भी अंतरंग इच्छा ऐसी ही मालूम होती है, कोई लब्धि हो कोई विशेष बात हो तो प्रसिद्ध नहीं करते हैं। जिनकी किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, निष्प्रता है ना, इसलिए कि जिनकी किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए कुछ कर्तव्य रूप न होने से जो कुछ उदय में आता है उतने ही करते हैं। क्या है, उनको तो आकांक्षा नहीं है, इसलिए आकांक्षा के कारण से कोई प्रवृत्ति नहीं करनी है, लेकिन उदय में जो माथे पे आ पड़ती है वो कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, तो पूर्व कर्म से छूटना है इसलिए। तो रागी द्वेषी मोही नहीं हो करके ऐसे ही संभाव से जो भी उदय आते हैं उसको निभा लेते हैं। हम तो कुछ वैसा ज्ञान नहीं रखते, हमारे में कोई त्रिकाल ज्ञान है ऐसी बात आप मत मानना, हम तो कोई वैसा ज्ञान नहीं रखते कि जिससे त्रिकाल सर्वथा मालूम हो। किंचित तो मालूम है लेकिन सर्वथा मालूम नहीं है, वो तो त्रिकाल केवल ज्ञान में ही होता है, वो केवल ज्ञान तो नहीं है, थोड़ा कोई विशिष्ट ज्ञान था, क्योंकि उनको तो ऐसे ही चमत्कार ही हुआ था कि जब सुभाग भाई पहले मिले तो नाम से ही पुकारा था, आइए सुभाग भाई बैठिए पधारिए, ताजुब हो गया, मैंने कोई चिट्ठी लिखी नहीं है, न कोई समाचार दिया है, न कोई जान पहचान है, हमने कभी देखा है, हमको भी नहीं देखा है, हमने नहीं देखा है, उनको भी उसने देखा है, नाम से पुकारते कि आइए सुभाग भाई। तो वो तो कहने अन्य मत की मान्यता में थे कि त्रिकाल ज्ञान हो सकता है कोई मनुष्य को, तो इनको भी हुआ होगा। ऐसा करके लेते हैं क्या, ये फाल्गुन में है, मिले हैं करीब 6 महीने के पहले तो मिले हैं उनको, 24 साल का फाल्गुन महीना है, फाल्गुन में मिले हैं, तो इसका मतलब 6 महीना हुआ है मिलने के। हम तो कुछ वैसा ज्ञान नहीं रखते कि जिससे त्रिकाल सर्वथा मालूम हो, और हमें ऐसा ज्ञान का कुछ विशेष ध्यान भी नहीं है। उसके संपगात हम जान ले, ऐसा ज्ञान हमको हो जाए, त्रिकाल त्रिकाल ज्ञान हो जाए, ऐसा हमकी कोई ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं है, दूसरी चीज की अपेक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञान की भी हमें अपेक्षा नहीं है कि दूसरों को हम चमत्कार दिखा दें, कोई बात नहीं है। हमें तो वास्तविक जो स्वरूप उसकी भक्ति और असंगता ही प्रिय है। हमारे स्वरूप की भक्ति और असंग स्वरूप में असंग भाव से हम रह जाएं, उसको ही हमें प्रिय है, दूसरा कुछ हमें प्रिय नहीं है। यही विज्ञापन है। वेदांत ग्रंथ प्रस्तावना भेजी होगी, नहीं तो तुरंत भेजिएगा। वेदांत ग्रंथ के आगे कुछ चर्चा चली होगी तो उसकी प्रस्तावना देखने के लिए भेजी होगी। विनित आज्ञाकारी क्या लिखा है, विनित हूं मैं और आज्ञाकारी भी हूं, क्योंकि आपकी बात का मैं निषेध नहीं कर सकता। तो आज्ञा आगे ना आज्ञा में कि नहीं आए, ठीक है, उसे उसका भी बहुत बहुमान करते थे, समझ जाएगा इस तरह से। इस तरह से ये जो सत्पुरुष के विषय में कई प्रकार की जो भ्रमणा होती है, वो भ्रमणा सब इस एक पत्र से निकल जाती है कि सत्पुरुष अगर पहचाना जाते हैं तो कितनी महिमा आती है, इतनी महिमा आती है इसको, तो उसका भी काम हो जाता है इतना उसमें सहज रूप से, वो बात गर्भित है। ये सत्पुरुष की महिमा का विषय इस ग्रंथ में जितना चला है उतना कहीं भी देखने में, उपलब्ध साहित्य में तो नहीं देखने में आता है। कितने परमागम है, गुरु की महिमा कई जगह गाई है, लेकिन उन्होंने चारों ओर से इस बात को जो खड़ी कर दी है, ये तो बहुत विशेषता वाली बात है। दोबारा में एक बात लिखी है कि जिसके वचन बल से, ये बड़ा वाला पैराग्राफ है वो देखिए बीच में, जिसके वचन बल से जीव निर्वाण मार्ग को पाता है, ऐसी सजीवन मूर्ति का योग पूर्व काल में जीव को बहुत बार हो गया है। सत्पुरुष नहीं मिला ऐसी बात नहीं है, परंतु उसकी पहचान नहीं हुई है। ज्ञानी पुरुष मिले हैं, महापुरुष मिले हैं, पहचान नहीं हुई, यानी पहचान होने की योग्यता में जीव नहीं आया है, तो ये योग्यता नहीं हुई है तो इसलिए पहचान नहीं हुई है। योग नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं है, पुण्य योग तो बैठा है बहुत बार, लेकिन पहचान एक बार भी नहीं हुई है। अनंत बार तो समस्त शरण में गई है, इससे ज्यादा मुनि का योग होता है, इससे ज्यादा सत्पुरुष का योग होता है, क्योंकि संख्या अधिक अधिक होती है नीचे नीचे आने में। पहचान तो एक बार भी नहीं हुई है, एक बार पहचान हो जाए तो फिर दूसरी बार पहचान करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सभी चीज में ऐसा है। जीव ने पहचान करने का प्रयत्न कुचित किया भी होगा थोड़ा बहुत, तथापि जीव में जड़ जमाई हुई सिद्धि योग, वृद्धि योग और दूसरी वैसी कामनाओं से जीव की अपनी दृष्टि मलिन थी। ये एक बहुत अच्छा संकेत किया है हर, कि जहां तक दूसरी चीज चाहिए वहां तक पहचान नहीं आती है, युद्धि सिद्धि कोई भी प्रकार की दूसरी कामनाएं रहती है तो पहचान नहीं आती। तो सारे जगत की पड़ी है, जब तो एक के पीछे सारे जगत की पड़ी है। जहां तक ये कामनाएं होती है वहां तक सत्पुरुष की पहचान नहीं है, क्योंकि जड़ बहुत है, उसका मूल बहुत है कि सारे जगत की कामनाएं पड़ी है, वो जड़ में वो बात पड़ी है उसमें। यदि दृष्टि मलिन हो तो वैसी सतमूर्ति के प्रति बाह्य लक्ष्य रहता है। क्या कितना है? ज्ञान ज्यादा है, कितना अच्छा समझा सकते हैं, वचन प्रयोग कितने अच्छे होते हैं, वाणी कितनी अच्छी है, और उसके अनुकूल त्याग भी थोड़ा बहुत अच्छा है। इस सब प्रकार के जो बाह्य त्याग, बाह्य ज्ञान, बाह्य वचन योग, इसकी जब तक महिमा आती है वहां तक